जन्म और मरण की माला में वो पड़े हुए हैं, इसे निकल नहीं पाते। इसलिए उन पर कैसे कृपा की जाए, जो ये लोग संसार से मुक्त होकर के हमारे चरणों की सेवा में तत्पर हो सके। इसलिए भगवान अवतरित होकर के बड़ी मनोहारिणी लीलाओं की अवतारणा कराते हैं। आप लोगों ने सुना जय रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कैसा उन्होंने जीवन में सुंदर सुंदर लीलाओं को की। जनकपुर में वो कैसे गए, सीता जी का स्वयंवर हुआ, उन्होंने राम के गले में जय माला दी, विवाह हुआ, अयोध्या में लौटे। जिस दिन रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना था उस दिन उनका वनगमन हुआ, सीता और लक्ष्मण को लेकर के वहां से चले। अयोध्यावासी विलाप करते करते उनके पीछे पीछे चले। निषाद राज के वहां पर पहुंचकर सोते हुए सबको छोड़कर फिर तीनों किस प्रकार से पहुंचे चित्रकूट में। चित्रकूट में राम को मनाने के लिए भारत आए, उनकी मैया भी आई, कैकेयी भी आई, सुमित्रा जी भी आई, कौशल्या जी भी आए, वशिष्ठ जी भी आए, सात पूर्ववासी लोग आए। वहां आश्रम के आसपास के जितने भी ऋषि इत्यादि थे सभी लोग आए, हो सकता है कि वाल्मीकि भी आए हों। महाराज जनक भी वहां पर उपस्थित हुए। कैकेयी ने राम से कहा, बेटा मैंने अन्याय किया, मैंने जो वर मांगा था अपने पति से, राम का वनगमन और भरत का राज्य मैंने ही तो मांगा था, इसलिए मैं लौटा लेती हूं। अब तुम अयोध्या को लौट चलो और तुम ही राज्य करो। मैं कहा, तुमने तो अकेले नहीं मांगा था, पिताजी भी थे ना आधा, इसलिए पिताजी के वचन की रक्षा के लिए अभी मेरा अयोध्या जाना उचित नहीं। सूर्यवंशी की लोगों की यह रीति है, प्राण जाय बरु वचन न जाय। मेरे प्राण चले जाएंगे तभी पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए मुझे वहां जाना है, नहीं मैं। भरत जी रो रो करके कौशल्या से कहा, जी मैया तुझसे अभी तक कुछ नहीं मांगा, ये मांगता हूं कि राम को लौटा लो, आदेश दो जो चल पड़े। उन्होंने भी मना कर दिया। वशिष्ठ से कहा, जी गुरु जी आपकी बात को मानकर के जरूर ये चलेंगे। वशिष्ठ जी ने भी इनकार कर दिया। महाराज जनक से को संदेश भेजा गया, उन्होंने किसी तरह से महाराज जनक को कि पत्नी सुनैना जी को कहा, उनके चरणों में गिरकर बोले, मैया ये कल ये विवाद का निपटारा होना है, रामचंद्र जी वहां जाएंगे कि नहीं, तुम मेरी तरफ से महाराज जनक को कहना कि वो धर्म पर विचार करके ये निश्चित करें कि रामचंद्र जी अयोध्या को लौट जाए। उन्होंने कहा, अच्छा मैं संदेश दे दूं। उन्होंने उनसे कहा भी, बड़ी भारी विराट सभा वैसी, एक तरफ में भरत शत्रुघ्न और सारे अयोध्यावासी, दूसरी तरफ में राम सीता लक्ष्मण, तीसरी तरफ में वहां के जितने ऋषि महर्षि सब बैठे, और चौथी तरफ में महाराज जनक बैठे। जनक जी ने अपने इष्टदेव का प्रणाम किया, इष्टदेव को, और प्रणाम करके बोलो, ये देखो भाई मैं सब प्रकार से विचार करके देखा, भरत का प्रेम अगाध है, प्रेम कोई रीति नीति नहीं जानता, इसलिए भरत की जीत है। सब लोग बड़े उल्लसित हुए, भरत जी का आनंद बहुत बढ़ गया। उन्होंने कहा अब तो राम को लेकर के चलना है हमको अयोध्या में, बड़े उल्लसित हुए जब भरत जी की जीत पर। किंतु उन्होंने कहा जो देखो एक बात और विचार करो, प्रेम का तत्व तो समझो, तुम प्रेमी हो, राम प्रेमिक हैं, तुम्हारे इष्ट हैं, राम को किस विषय में सुख है इस चीज को समझो, और जैसा वो कहता है वैसा तुम्हें पालन करना चाहिए। ये तो प्रेम की रीति है, उसकी भी एक नीति है। तुम्हारे प्रेम रूपी अगाध समुद्र में राम की मर्यादा भले ही डूब गई हो, यह बात ठीक है, और तुम्हारे इच्छानुरूप ही राम को करना चाहिए, किंतु उनसे पूछो जो उनको किसमें सुखी है वो हो सकता है, उनको किसमें प्रीति है वो क्या चाहते हैं। उन्होंने राम को कहा भैया अब मैं समझा, अभी तक नहीं समझता, प्रभु किसमें प्रसन्न रहे हो प्रसन्न हो ये भक्त को देखना चाहिए, और अपनी प्रसन्नता चाहता है तो वो भक्ति नहीं हुई, वो प्रेम प्रेम नहीं है। इसलिए आज मैं प्रेम का तत्व सोचा, अभी तक मैं अपनी ओर से देख रहा था, अब मैं देखता हूं कि आपको किस चीज में प्रसन्नता हो वही चीज हमको करनी चाहिए। अब बतलाइए मेरे लिए क्या आदेश है, आप अयोध्या चलने में प्रसन्न है या किस काम में प्रसन्न। राम ने कहा जे भाई वो तो जनक जी ने ये तो फैसला कर दिया, ये मैं तुम्हारे प्रेम में पराजित हो गया, हमें पराजित होने के कारण अयोध्या का राज्यभार मैं ले लेता हूं। हमें राम अयोध्या का पति हूं, ये बात ठीक है, मैंने राज्य ले लिया, किंतु यह राज्यभार 14 वर्ष के लिए, इसकी व्यवस्था तुम करना सेवक होकर के, इसमें मैं प्रसन्न हूं, इसलिए 14 वर्ष तक मैं पिता का आदेश मांग करने के लिए पालन करने के लिए वन में जा रहा हूं, किंतु तुम हमारा सेवक होकर के हमारी प्रसन्नता के लिए इस राज्य की तुम रक्षा करना, देख सुन करना। बस रामचंद्र जी के पादुका को लेकर के अपने सिर पर और वो लौट गए नंदी गांव में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में दंडकारण्य में राम पहुंचे, वहां सीता जी की चोरी हुई, लंका में गई, युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में रावण सा वंश मारा गया, मरने के बाद में राम सीता लक्ष्मण जी अयोध्यापुरी में पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में 11,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य किया। अंतिम दिनों में उनका CID खौफिया वो राज्य में घूम करके राम को राज्य का संवाद देता था, उसने आकर के कहा कि आज एक विचित्र बात मैंने सुनी, एक धोबी अपने पत्नी को पैरों से ठोकर मार करके बोला हमारे घर से तू निकल जा, अभी शाम हो गई रात हो गई तुम अभी तक कहां थी, मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, मैं ऐसी स्त्री को नहीं रख सकता जो मनमानी स्वतंत्र रूप में चारों तरफ में घूमती रहे। राम को देख करके राम ने विचार किया, प्रजाओं में फुसफुसाहट हो रही है मेरे चरित्र के बारे में, सीता जी के चरित्र के बारे में। उन्होंने छल कर लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी को वन में भेज, राम ने कहा लक्ष्मण जी से भैया लक्ष्मण सीता जी से कहो वो वनवासी की स्त्रियों को कपड़े लत्ते देना चाहती हैं, आभूषण बांटना चाहती थी, उनसे कहना कि वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में जितने कपड़े हो मूल्यवान सोना के अलंकार हो वो लेकर ऋषि पत्नियों को लेकर के बांट आ सकती हैं आश्रम में जाकर। इस बहाने से कपड़े उठी और आभूषणों की गठरी बांध कर उनके साथ में दे दी गई। लक्ष्मण जी इस विषय को जानते थे कि वो गंगा पार पॉइंट पहुंचे जहां पर वाल्मीकि जी की कुटी थी। रोने लगे जब उनको छोड़ना हुआ तो रामचंद्र जी ने जीवन भर के लिए उनको त्याग कर दिया। इसलिए लक्ष्मण जी रोने लगे। भाभी ने पूछा, देवर तुम किस लिए रो रहे? अरे मैं भी तो राम ही के निकट रह उनकी सेवा करती हूं आर्य पुत्र की, मैं तो रो रही ही, एक दो दिन के बाद में फिर लौट जाएंगे। लक्ष्मण जी का ने कहा, भाभी ऐसी बात नहीं, उन्होंने सारे जीवन के लिए तुम्हें त्याग कर दिया है, बस तुम कहीं बस मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद में नौका से उनको उस पार उतार कर गठरी और सब कपड़े वहीं पर रख दिए। रोते बिलबिलाते नौका से और लौट आए। थोड़ी देर के बाद में जब उनकी आंख खुली मूर्छा जब दूर हुई तो देखा जी लक्ष्मण भी नहीं है, गठरी पड़ी है अलंकारों की और वस्त्रों की। बड़े जोर से रोने लगे, आर्य पुत्र राम के लिए कहकर। इतने जोर से रोने लगी कि आसपास के पशु पक्षी भी रोने लगे। वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम निकट था, वह वहां से आए। देखा जैसे ये तो वही सीता जी हैं। बस उनके सिर पर अपने हाथ रख करके बोले कि बेटी तू हमारे आश्रम में चलो, मैं तुम्हारा भरण पोषण और सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपने आश्रम में ले आए। सीताजी वहां पर रोती कलपती जैसे वहां रहने लगी। कुछ दिनों के बाद में आश्रम में ही लौकुश का जन्म हुआ। उनको शिक्षा भी देने लगी। और उधर राम इनके विरह में तड़पने लगे। सीताजी जहां वन में रह करके कुछ के आसन पर सोती हैं, थोड़े से फूल कंद इत्यादि पर जीवन निर्वाह करती हैं, राम राजभवन में समस्त भोगों की चीजों को उन्होंने अल्प दूर कर दिया। और दूर करके चटाई पर केवल सोते, तकिया गलीचा और ये सब चीजें छोड़ दी। नौकर चाकरों की सेवा भी छोड़ दी। वो वन में तड़पती रही और ये राजभवन में तड़पते। उनको वाल्मीकि जी का संग था और लौकुश की सेवा प्राप्त थी। गोदी में लेकर के वो थोड़ा सा भूल जाती थी और राम को कोई सी चीज का सहारा नहीं, वो अकेले ही बिलाप करते, रात भर नींद नहीं आती। थोड़ी देर के बाद में, कुछ दिनों के बाद में रामचंद्र जी से विरह सज्ज नहीं हुआ। उन्होंने सोचा जी कुछ अश्वमेध यज्ञ इत्यादि कराएं, उसके द्वारा मेरा मन बहल जाएगा। वशिष्ठ से उन्होंने कहा, गुरु जी मैं यज्ञ करना चाहता हूं। तुम यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हो। क्यों गुरु जी? इसलिए कि तुम्हारी पत्नी को तुमने त्याग कर दिया है। अकेला पति पत्नी को प्रत्याग करके नहीं कर सकता है, जब उसका अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा जी हमको तो यज्ञ करना है, आपको किसी प्रकार से कराना, तो एक बात करो, तुम्हारे पिताजी को तो 360 विवाह हुए थे, तो तुम एक और शादी कर लो। नहीं, विश्व में ऐसी कौन सी सुंदरी श्रेष्ठ है जो आपसे शादी नहीं करना चाहेगी? जनकपुर में ही आपको मिल जाएंगी बहुत सी। उन्होंने कहा मैं शादी सीता के अतिरिक्त और किसी से आप नहीं, नहीं हमको करना, फिर भी हमको यज्ञ कराएगी। उन्होंने कहा तब एक बात करो, सीता जी की मूर्ति स्थापना कर और उसी को बाएं में रख करके गांठ बांध करके यज्ञ करो। हाँ ये हो सकता। इसलिए सीता जी की मूर्ति सुंदर भव्य बनाई गई जो सीता जी के देखने के समान ही हो, और रामचंद्र जी अपने हाथों से प्रतिष्ठा करते हैं वो जीवित हो। ऐसी सुंदर मूर्ति थी, माने बोलती है चालती है। लौकुश अपने गुरु जी के आदेश से विश्व में सर्वत्र ही रामलीला का गान करते हैं। जिन्होंने राम जी के समय में ही, अवतार के समय में ही वाल्मीकि रामायण लिखा था, सुंदर पद अनुष्टुप छंदों में उसको ललित स्वर में गाया जा सकता है। विशेष करके वीणा यंत्र पर उसको बड़ी सुंदर से गाया जाए। जहां पर गाने वाले अत्यंत सुकोमल 7-8 वर्ष के बच्चे हों, माने कूश लव और कूश, राम ही का सारा ऐश्वर्य सिमेट करके और उनका सौंदर्य सिमेट करके लव और कुश के रूप में ठीक अभी कल वैसे ही देखने में, गला अद्भुत सुंदर कोयल को भी मात करने वाला बिना जंत्र में मिला करके गान कर रहे थे। गान करते 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 मध्य अवकाश में जब यज्ञ का बीच का भाग आया, यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद में सभी लोग बैठ करके हरि कथा को सुन रहे थे, पौराणिक कथाओं को सुन रहे थे, लव कुश आकर के रामायण का गान कर रहे उनके गले से सुन करके, और सुंदर सुंदर छोटे बच्चे सन्यासी जैसे केस को यहां पर बांध रखा बीड़ा जंत्र लेकर के, अद्भुत सुंदर कुमार अभी पौगंड उम्र से किशोर में अभी जा रहे हैं, सभी लोग देख करके ही रूप देख करके ही मुग्ध हो गए। और जब गान करने लगे रामायण का, सीता जी का स्वयंवर वनगमन और सब जब करे, सभी लोग रोने लग गए। क्यों, 2-3 सर्ग सुनाया था, सभी लोग मुग्ध हो गए, राम की आंखों से आंसू की धारा गिरने लग गई, वहां पर उपस्थित कौशल्या मैया रोने लग गई, कई सभी लोग वशिष्ठ तक रोने लगे, लक्ष्मण जी कितनी बुरी हाल हो गई, सभी लोग तन्मय होकर के सुन रहे हैं और रो रहे हैं। राम ने, जबकि वो कथा समाप्त हुई, राम ने कहा लक्ष्मण से, भैया जरा पूछो तो इसके पिता माता का क्या परिचय है, और इनको पुरस्कार के स्वरूप में खजाने से सोने के थाल में हीरे और मोती भरकर इनको दिया जाए। सबके व्यवस्था करके लक्ष्मण जी दोनों बालकों के पास में पहुंचे, बोले जे बेटे रामचंद्र जी राजा इस देश के, तुम्हारे ऊपर में अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछ रहे हैं, ये तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तुम्हारा किस वंश में तुम आए हो। मुझे आप जैसा बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर सकता है, मुझे इसका भान नहीं था। शास्त्रज्ञ लोग ब्रह्मचारी का माता पिता का नाम और वंश का नाम नहीं पूछते, वे उनके गुरु का नाम परिचय पूछते हैं, और तुम हमारे वंश का नाम परिचय पूछ रहे हो, ये तो शास्त्र के विरुद्ध है। हमसे पूछो हमारे गुरु जी का नाम वाल्मीकि जी है, यही हमारा परिचय है, प्रथम परिचय और अंतिम परिचय यही है, हमारे वो गुरु हैं, इसके अतिरिक्त मैं और कोई परिचय नहीं जानता। लक्ष्मण जी सुन करके मौन हो गए, कोई उत्तर देने का कुछ रहा न पूछने का। फिर उन्होंने सोने की थाल में भरे हुए हीरे मोतियों को उनके सामने दिया, देते ही उन्होंने इनकार कर दिया, मुझे क्या क्या भाई, इस सोने से और इस द्रव्य से मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु के आश्रम में रहता हूं, केले अमरूद आम लीची बेर कैंक ये सब पड़े हुए हैं, हम लोग का जीवन का निर्वाह उसी से हो जाता है, इसे रुपए की क्या जरूरत है, कपड़े के लिए केले के पत्रों के छिलके हम पहन लेते हैं, हमको क्या जरूरत है, लोटे इत्यादि की और थाल की क्या जरूरत है, जमुना में गंगा में पानी ऐसे उठाकर के अंजलि से पी लेते हैं, साथ में करपात्री जैसा भोजन कर लेते हैं, आकाश के नीचे ही सो जाते हैं वृक्षों के नीचे, हमें इस सबसे कोई प्रयोजन नहीं, ये तुम अपने खजाने में रखो, इसे तुम्हारा ही कुछ उपकार होगा, हमारे लिए इसकी कोई भी आवश्यकता। सभी लोग यह देख करके सुन करके और भी चकित हो गए, और दिन भर रात भर इन बालकों की ही बातें चर्चा करते रहे। इधर लव कुश लौटे अपनी मैया के पास में, मैया ने कहा जी बेटा इतना तुम्हें विलंब क्यों आज हो गया, एक को दाहिने जंघे पर लव को और कुश को बाएं जंघे पर बैठा करके बड़े प्रेम से उनका मस्तक सूंघ रही है और सिर पर हाथ फेर रही है, बेटे आज कैसे विलंब हो गया। मैया आज तो हम लोग एक किसी राजा के दरबार में गए और वहां पर हमने रामायण की कथा सुनाई वाल्मीकि जी इसको सुनाया हमने, सभी लोग बड़े मुग्ध होकर के सुन रहे थे। भैया मैंने एक चीज देखी, हमने ये देखा कि पास ही में यज्ञशाला में किसी एक
सोने की मूर्ति को देखा। जब मैंने उस मूर्ति को देखा तो तेरी याद आ गई। तुम्हारे रूप में उस मूर्ति के रूप में कोई भी अंतर नहीं था। तुम बोल रही हो और वो बोलती नहीं, बस इतना ही अंतर, किंतु बाकी सब कुछ एक समान देखा। ये सुनते ही वो तो सुना रहे थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे पिताजी का। वो एकदम रोने लग गई। लौ कुछ ने कहा, भैया तू रोती क्यों है? और अपने इस दोपट्टे से उनका आंखों का आंसू पोछने लगे। वाल्मीकि जी वही सब दृश्य देख रहे थे, वे भी द्रवित हो गए। सीता जी समझ रही हैं, राम ने मुझे नहीं छोड़ा, ये राजा ने अपनी रानी को छोड़ा है, मुझे नहीं। देवी छोड़ते तो हमारी मूर्ति बना करके उसमें गांठ बांध करके ये नहीं ऐसा यज्ञ करते, इसलिए हमको नहीं छोड़ा है। छोड़ा है रानी को छोड़ा है। दूसरे दिन बच्चों ने फिर से कथा कही, उसमें और भी आगे की बातें कहीं, सभी लोग और भी स्तब्ध हो गए और मुग्ध हो गए। राम ने वाल्मीकि जी को बुलाया, महर्षि वाल्मीकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके आश्रम में ही हमारी प्रिया सीता जी हैं, क्या आप उनको उपस्थित कर सकते हैं मेरी सभा में, मेरे सामने? उन्होंने कहा, जैसे आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही करें। आश्रम में गए, सीता जी से पूछा, बेटी राम का आदेश है, मैं तुम्हें उस उनकी राजसभा में ले चलूं, चलेगी? तुम्हारा क्या विचार? उन्होंने कहा, जो मैं तो आपके शरणागत हूं, आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए मैं बात करूं, मेरा अपना कुछ भी स्वतंत्र विचार नहीं। उन्होंने कहा, राम जगत में सर्वश्रेष्ठ है, वह स्वयं भगवान जी है और ये लीला ऐसा कर रहे हैं, मेरी समझ से तुम्हारा जाना और उनका आदेश पालन करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम हमारे पीछे पीछे उस राज्यसभा में चलो। वो तैयार हो गई, उन्होंने दोनों बालकों को साथ लेकर वाल्मीकि के पीछे पीछे घूंघट उतार कर नीचे और चल। जब सभा में पहुंची, सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो रहे, अरे ये लौकुशम ये राम का ही बेटा मालूम पड़ता है, क्योंकि सीता जी के साथ में दिखाई पड़ता है, ये सीता जी हैं और उनके दोनों पत्र उनकी दोनों उंगलियों को पकड़ कर दिया। अब तो आश्चर्य लोगों की सीमा नहीं है, एक तक देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब राम के सामने सीता जी आई, राम नमी आंखों से अर्थात छल फलाती हुई आंखों से सीता जी को संबोधन करते बोले, प्रिये मैं जानता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से पवित्र हो, इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है, पहले भी इसका प्रमाण हो चुका है, तभी मैं प्रजाओं को यह आश्वासन देना चाहता हूं, इसलिए तुम अपनी पतिव्रता होने का प्रमाण कुछ दो। सीता जी ने कहा, और भी प्रमाण की जरूरत है? तो ठीक है, मैं प्रमाण दे रही हूं। उन्होंने कहा, हे धरत्री माता, आप मेरी माता हैं, आपके कोख से मैं उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए आप यदि मैं राम के अतिरिक्त तन से मन से वचन से किसी को और अपना नहीं समझा है, तो आप जल्दी से यहां पर आकर के और हमें अपने अंक में ले लीजिए। तीन बार ऐसा कहा और तीसरा बार जैसे उन्होंने कहा, पृथ्वी फटी और उसमें से सुंदर सिंहासन के ऊपर में पृथ्वी माता वहां पर दर्शन दिया और धट से सीता जी को अपने अंक में समेट करके और क्षण मात्र में ही देखते देखते सभा सभी लोगों के और उसी कंतर में अंतर्भुक्त होकर समस्त सारी सभा हाहाकार कर उठी। राम भी हाहाकार उठे करके उठे, संस बाण लेकर के उठे, बोले ये तू मेरी सास है, अभी सीता जी को यदि तुम नहीं लौटाती तो मैं बाणों से तुम्हें विदीर्ण करके खाक कर दूंगा। वाल्मीकि जी ने कहा, जो बस हुआ इस रूप को दूर कीजिए, सीता जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं साथ इसमें, ये आगे गई, अब आपकी लीला समाप्त होनी, अब ऐसे विक्रम दिखाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं। लोग इन लीलाओं का स्मरण करेंगे, उनका हृदय पवित्र हो जाएगा, वे सभी को वहां पर पहुंचेंगे, बैकुंठ में आपके धाम को पहुंचेंगे। इस तरह से रामचंद्र जी ने ऐसी सुंदर लीलाएं की, किंतु इस लीला को भी मात देने के लिए इसे भी ऊपर की कोई लीला है, यही तक समाप्ति नहीं है। इस दिखलाने के लिए चंद्र वंश में, विशेष करके जदु वंश में, जदु महाराज के वंश में, ये कृष्ण जी समस्त माधुर्यों के रसों के आधार कृष्णचंद्र जी प्रकट हुए। इसी से आप समझिए, ये इस रामलीला जो इतना करुणाकर है, करुणापूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो अभी इनसे बहुत श्रेष्ठ रस की दृष्टि से राम की अपेक्षा, नारायण की अपेक्षा कृष्ण का वैशिष्ट्य है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, शुभानंद जी इसका सबका वर्णन करेंगे और सुनाएंगे, नहीं तो उसमें बहुत अंत ये हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, इसलिए अधिक समय नहीं लेकर के दो चार शब्दों में ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। इससे समझो कृष्ण जदुकुल में पैदा हुए, एक ही साथ में गोकुल में, अभी लीला आरंभ नहीं हुई, एक ही साथ में मथुरा में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण के रूप में अवतरित थे, और उसी समय उसी रात में उसी समय में गोकुल में यशोदा मैया के पुत्र के रूप में उनके गर्भ से पैदा हुए हैं और बालकों को जैसी लीला। राम जी का ऐसा नहीं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी, चतुर्भुज दिखलाया, वो पहले विष्णु था, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, किंतु यशोदा मैया ने स्तुति नहीं की, कोई स्तुति की जरूरत नहीं, हमारा बेटा पैदा हुआ है, हम इसका पालन पोषण नहीं करने से ये बच नहीं सकेगा, इसको कहते हैं मधुर भाव। ऐसे श्रेष्ठ है कि ब्रज में वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य है सूरदास, कितना मार्मिक वर्णन करते हैं कौशल्या के इनके भाव को, यशोदा जी का बात समझता अपनी वीणा की तान पर कितना सुंदर बन करते हैं, सबको मुग्ध कर देते हैं वात्सल्य के भाव को, मूर्ति उसकी खड़ी कर देते हैं, इसलिए सभी लोग उसे मुग्ध होते हैं, यहां बस उन्हीं की कविताओं को, उन्हीं के ही सचिदों को सूरदास के लेकर के कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। मक्खन को ले लड्डू लेकर के ऐसे चलने वाले कृष्ण को ही अपना आराध्या लोग मानते हैं, किंतु देखो एक ही बात समझो, एक बार किसी वल्लभ संप्रदाय के किसी भक्त से और चैतन्य महाप्रभु के किसी रसिक भक्त से परस्पर भेंट हुई, वल्लभाचार्य जी का यह वात्सल्य रस बहुत ऊंचा है, हम लोग उसका नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, किंतु एक बात से ही विचार कीजिए, यशोदा मैया कृष्ण का कितना लालन पालन करती हैं, इसलिए वल्लभाचार्य जी का भक्त कह रहा है देखो श्रीनाथ जी में हम कैसा भगवान की सेवा करते हैं, इनकी कृष्ण की सेवा करते हैं, शुद्ध हजारों गायों का दूध का मक्खन बनता है और उसके लड्डू बनते हैं, शुद्ध घी का पूड़ी बनता है और ठाकुर जी को भोग देते हैं, तांबूल की सेवा होती है, हजारों लोग बैठे हुए तांबूल बना रहे हैं, कोई माला बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं और उनकी सेवा करते हैं बाल गोपाल की, इसलिए बाल गोपाल की सेवा सबसे उत्तम है। गौड़ीय वैष्णव ने कहा बात तो ठीक है, माता का कृष्ण के प्रति खूब वात्सल्य बहुत ऊंचा भाव है, किंतु ये मैया यशोदा की गोदी में सोए हुए हैं, 8-9 रात के बज गए, कृष्ण सोचा जी मैया कब यहां से चली जाए, तो हमको कहीं चलना है, कहां चलना है, बड़े उत्कंठित हो सोचा जी मैया अब जाए अब जाए अब जाए, अंत में मैया इनको सुला करके सो करके और जहाँ अपने भवन में जाती हैं मैया माता इत्यादि को सबको छोड़ करके कुंजों में श्रीमती राधिका जी से मिलने के लिए आतुर होकर के चली जाती। उन्होंने कहा लाज प्यार करो, खिलाओ पिलाओ सब करो, किंतु वो हमारे राधा जी का ही गुलाम है, जगत का ईश्वर। राधा जी के लिए तरसता है, स्मर करण खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद फलम उदारम। वहां जाकर के यहां तो यशोदा मैया की गोदी में बड़ा लाड प्यार खा रहा था और सोचा ये जल्दी से मैया हट जाए, वो वहां गया और राधा जी ने वहां पर मान किया ये देरी क्यों किया और इनसे बोल नहीं रही और कह जी हमारे कुंज से निकल जाओ और वहां पर अपनी बंसी को समर्पित कर दिया कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में, और कहती अपनी मान की भिक्षा हमें दे दो प्यार, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, भीख मैं मांगता हूं, तुम अपने मान को हमारे अंचल में भीख दे दो। तो बताओ तो कौन श्रेष्ठ हुआ, ये चैतन्य महाप्रभु के और उनके परिकरों का भाव है, इसलिए इससे सर्वोत्तम और कोई चीज नहीं हो सकता। इसी भाव को दिखलाने के लिए ही स्वयं भगवान कृष्ण इस ब्रज में आए, और सब गौण चीजें हैं, धर्म की रक्षा करना, जो धर्म का प्रवर्तन करना, और सब जो लीलाएं दिखलाई उन सब में गोपियों के भावों की सब उत्तरा श्रीमद भागवत में दिखलाई। कृष्ण बस इसी रस का आस्वादन करने के लिए आए, जब यहां पर पूरा नहीं हुआ तो नवद्वीप में चले गए और राधा जी के भाव को चोरी कर रसराज कृष्ण के इन भावों को उन्होंने आस्वादन किया था, इसी का हम लोग पीछे से विवेचन करेंगे। आज मैं यहीं पर अपना समाप्त करता हूं। गौ प्रेमानंदे एक
समे समे कृष्ण दैपानो विरह का सरया भाव पुत्रे सन्मेतया सर्वोषु संसर्वभूत हृदय आज श्रीमद्भागवत कथा का पांचम विवरण भगवान के कृपा और गुरु कृपा निर्विघ्न भागवत कथा चल रही है। श्रद्धालु लोग कथाओं का अनुसरण कर रहे हैं, प्रत्येक चीज का ध्यान रखना चाहिए। कथाओं को सुनकर ऐसे ही आचरण करने की चेष्टा करने से ही तब तक सुनना हुआ कृष्ण स्वयं भगवान है। उन्होंने अर्जुन को जो कहा गीता में, उन्होंने अपनी बुद्धि का कोई भी प्रयोग न कर जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने कहा किया, समझने की चेष्टा की। उसी तरह से भागवत में जो कहा गया है, कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं उनको निर्विवाद रूप में किंतु समझ कर करने की चेष्टा हमको करनी चाहिए, तब तो भागवत का श्रवण हुआ। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भी भागवत का श्रवण करने का फल धन पुत्र स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है मुक्ति, किंतु ब्रज वाला जो फल है वो नहीं मिलेगा। कृष्ण ने मैया से पूछा, मैया आज पूरी पकवान किस लिए बन रही, आज मेरा जन्म दिवस है, मुझे खिलाएगी, मेरे लिए बन रहा है। मैया ने कहा मुझे समय नहीं, जल्दी जाओ बाबा हमारे पास समय जाओ। उनका मन खराब हो गया, वो पिताजी के पास में गए, पिताजी के गोदी में बैठ गए और अपने हाथों से उनकी फोटो पकड़ करके बोले पिताजी ये मैया आज बड़े व्यस्त होकर के मालपुआ इत्यादि बना रही है, पकवान बना रही है, आज मेरा जन्मदिवस तो नहीं है, आज सब लोग आएंगे उपहार देकर के मुझे खिलाएंगे, मैया भी मुझे खिलाने के लिए ये सब चीजें बना रहे हैं। नहीं बेटा इसलिए आज इंद्र की पूजा होनी है, आज घर घर में सभी तैयारियां कर रहे हैं, गोप गोपियां आज गोवर्धन की पूजा होगी, इंद्र की पूजा होगी। पिताजी क्यों इंद्र की पूजा होगी? वो हमारा त्याग उपकार करते हैं, वर्षा देते हैं, घासें होती हैं, गायें खाती हैं, उसे दूध होता है, दूध से हम लोगों का परपोषण होता है, मैया की तरफ वो पालन करते हैं, वर्षा से खेतों में अन्न होता है, इसलिए प्राणी जीवन धारण करते हैं, बिना पानी के ऐसे भी लोग मर जाए, इसकी व्यवस्था इंद्र करता है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। साधारण लोग यही समझते हैं कि देवता लोग अपने अपने कार्यों से करते, हमारा किसी न किसी उपकार करते हैं, इसलिए उनकी पूजा कर देते हैं। कुछ तो पूजाएं हैं जो शास्त्रों में विधिवत हैं, उनको वैद्य की पूजा, सत्य की पूजा इत्यादि कही जाती है। आजकल मनमाने ढंग से अपने स्वार्थ से काम लोकता के कारण कृष्ण की पूजा एकादशी के दिन जैसा होना चाहिए, विधि के अनुसार निर्जला रहकर हरि कथा और कीर्तन के माध्यम से रात्रि का जागरण होना उचित है, ये तो शास्त्र की विधि है, सत्य दर्शन है, किंतु शास्त्र में ये कहीं नहीं कहा गया कि अपने स्वार्थों की पूजा पूर्ति के लिए चंडी जी का जागरण करें, मांस मछली अंडे खाकर विशेष करके शराब का सेवन कर मदमग्न होकर के छोड़ हो हल्ला गुल्ला करें, किसी को सोने नहीं दे रहा था, समाज को आसपास के लोगों को संग लग जाना, ये तो कहीं नहीं लिखा था। जबकि सात्विक की पूजा इंद्र की है, उसको ही कृष्ण चुड़ा रहे हैं और उनको निर्गुणी उपासना में ला रहे हैं, कोई किसी की कामना मत करे, कृष्ण की पूजा करे और कृष्ण की फल क्या है, बस यही ब्रजवासियों को होना चाहिए। हम करते तो हैं ब्रजवासी अभिमान, किंतु ये तामसिक भी नहीं, तामसिक से भी आसमी की ये पूजाएं हैं। आजकल मथुरा में ऐसा छा रहा है धीरे धीरे, यहां तक इनमें श्रवण करने वाले जो आए हैं, इनमें भी बहुत से ऐसे होंगे जो वहां पर भी जाते होंगे और उनका बहुत अच्छा उत्तम प्रसाद भी पाते हैं। जो मदिरा से भी किया होगा, वहां पर जितने कीर्तन करने वाले होते हैं वो मदिरा में बम बम होता था, बम 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 बम, न जाने क्या क्या दुर्गे 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 चंडी चंडी करता है। अरे वृंदावन की चंडी तो कात्यायनी है, जिनकी उपासना की बात आप लोगों ने सुनी, उन्होंने क्या किया, गोपियों को रास में पहुंचा दिया, जो सर्वोत्तम कृष्ण के लिए आया, इसलिए ये सब तामसिक उपासना भी आसमिक आजकल की उपासनाएं हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, यदि कोई राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई तो उपवास करते हैं दाढ़ी रखते हैं, अरे एकादशी के दिन उपवास करो, जन्माष्टमी के उपवास करो, और ऐसी उपासना करके कोई 40 दिन तक करता है और अंत में मर जाता है, शरीर को भी कष्ट दिया, आत्मा को कष्ट दिया, भगवान को भी कष्ट दिया, इसे पिछला नहीं, भगवान जब अवतरित होते हैं तो ऐसी उपासनाओं को दूर कराने की चेष्टा करने के लिए उपदेश करते हैं पिताजी से उन्होंने यही। और आप लोग यदि कृष्ण की बात नहीं माने, जैसे इंद्र को उन्होंने कहा, तामसिक उपासनाओं को आस्तिक उपासनाओं का वर्जन करके शुद्ध रूप से मेरी उपासना करो, यदि नहीं मानेंगे तो क्या कृष्ण की बात नहीं मानते और नरक में जाएंगे। इसलिए तांत्रिक उपासनाओं में, कीर्तनों में, जागरण में नहीं जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ऐसा लोग मत करो, किंतु आज बड़े दुख की बात है, समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको समझाए, किसी की बात ही नहीं मानेंगे, वो हमको भी निमंत्रण करते हैं, महाराज जी आज के लिए हमारा कति जी का जागरण हो रहा है, आप थोड़ा सा मैं राज्य में जाने के लिए तैयार हूं, किंतु बात कहूंगा अपनी, चाहे किसी को दुख लगे सुख लगे, फिर आप लोगों का मन खराब हो जाएगा, हम तो कहेंगे कि ऐसी उपासनाओं को छोड़ो, अरे जहां देखो ये कृष्ण अपने पिता को माता को सारे ब्रजवासियों को इंद्र की सात्विकी उपासना, राशि को तामसिक में सात्विक उपासना है, उसको भी छुड़वा दिया। तो ऐसे पूजाओं से दूर रहने चाहिए। कृष्ण की गोवर्धन की पूजा कराने का ये उद्देश्य। गोवर्धन है कौन? कृष्ण गोवर्धन जी का दूध। एक भगवत है और एक भगवत भगवान के स्वरूप में उन्होंने कृष्ण की मूर्ति वहीं पर धारण कर कृष्ण ने ही गोवर्धन का रूप धारण करके शंकर कदा पद्म लेकर के लंबी पूजाओं से आंदोलन करेंगे। और ले आओ और ले आओ सारा बदमाशियों का जितना गाड़ियों का लाखों गाड़ी पकवान ठाकुर जी को भोग लगे। उन्होंने एक ऐसे लंबे लंबे हाथ उठाए और मिनटों में सारा आ गए। बोले जी और ले आओ आनो रे आनो रे। कृष्ण ने अपने ही को अपने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। देखो आज हमारी उपासना से गिरिराज गोवर्धन अपना स्वरूप धारण करके हमसे बातचीत कर रहे हैं और मांग रहे हैं। तुम्हारे पकवान बड़े मीठे को लग रहे हैं। ये मीठा किसको लग रहा है? किंतु करेंगे मांग रहे हैं। दुर्योधन का 56 प्रकार का भोग नहीं दिया। विदुर के घर में केले के छिलके से ही प्रसन्न हो गए। योगी और ऋषियों की कोई भी बर्तन नहीं लेकर के सीधे सबरी के यहां गए और जूठी बेर खाया। उनको किसी चीज की कमी नहीं, उनको प्रेम की जरूरत है। तो प्रेम को ही आरोप लगाता है। जिस बर्तन में प्रेम नहीं है भक्ति नहीं है उनको नहीं देते। इसलिए सारी तामसिक और राजसिक यहां तक की सात्विक उपासनाओं को लोग भगवान ग्रहण नहीं करते। मेधुनी जो उपासना है उसी को ग्रहण करते हैं। इसके कारण ये लाओ है। देखो आज हमारे ऊपर में गिरिराज जी बड़े प्रसन्न। अरे गिरिराज जी में तुम ही तो वो गिरिराज बने। इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान का गिरिराज जी का दो स्वरूप, एक तो कृष्ण ही बन गए और भगवान के रूपों में कह रहे हैं तुम्हारी जो इच्छा हो वो बताओ ये पूर्ण कर देंगे। गिरिराज अपने लिए नहीं कर रहे, अपने तो छोटे से बालक बने हुए हैं। और हम जैसे एक स्वरूप है उनका सेवक का। गोपियां वर्णन करती हैं अभी पेंड में शायद हो गया उसमें काफी गोपियां बतला रही हैं। क्या संतान अभ्रबला हरिदास जतराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानव समोद सा गो गण युष पायनी अशु जब सकर। आज राजी कितने बड़े दयालु हैं। ये भगवान के समस्त प्रकार के भक्तों में सर्वोत्तम हरिदास है। ये कृष्ण की और बाल बालों की पिपाशा को मिटाने के लिए जल देते हैं, जो कि गोविंद कुंड में, श्याम कुंड में, मानसी गंगा में, कुसुम सरोवर में भरे रहते हैं। निर्मल पानी उसमें गाय भी पानी पीती है। कृष्ण के सखा लोग उसमें पानी पीते हैं। यदि गोवर्धन नहीं रहते तो वर्षा भी नहीं होती, सूखा पड़ता। और सखाओं को खेलने के लिए तरह तरह के फल फलों से भरा हुआ कुकुबन बना करके रखते हैं, जिसमें सखा लोग कृष्ण के साथ में खेल कर और भूख लगने पर उनके आम के फल, कटहल के फल, लीचू, बेदाना और जितने प्रकार के फल हैं उन सबों को खाते और खिलाते। सुंदर घाटों से गायों को खिलाकर उनको परिपुष्ट करते हैं। चमड़ी गाय का पूंछ जो आमों पर होती है कृष्ण के लिए चमड़ फुलाने में गैरिक धातुओं को उत्पन्न करते हैं, जिससे कि कृष्ण का कलेवर, गोपियों का कलेवर, उसे श्रृंगार होता है। सुंदर सुंदर पुष्प उनसे सखा लोग कृष्ण को सजाते हैं। वहां पर शकर से भी अति गोपियों के लिए कृष्ण के साथ में विहार करने के लिए सुंदर सुंदर पुंज बनते हैं। ये कौन बनाता है? गिरिराज जी, जिसमें हमारे प्रयास या तम भी विहार करें और कोई नहीं करता। इसलिए उत्तम कोटि के भागवतों में भी ये सर्वश्रेष्ठ है हरिदास। दूसरा स्वरूप जो ये भक्त का है ये अधिक हम लोगों के लिए उपयुक्त है। जो गोपियां जैसे भाव से उनकी उपासना की, हम लोगों को वही उपासना लेना चाहिए। गिरिराज को यदि भगवान समझेंगे तो भगवान की उपासना करने से वही चीज देंगे जो उनके पास में है। धन धान इत्यादि मुक्ति सदन सबसे प्रेमा भक्ति देते हैं, किंतु गोपियां जिस भाव से आराधना करती हैं कृष्ण की सेवा ये नहीं दे सकते, ये कौन देंगे? कृष्ण के सेवा गोपियां राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन यमुना ये सब दे सकते। इसलिए हम लोगों को गिरिराज की उपासना, यमुना जी की उपासना, राधा कुंड की उपासना केवल गोपियों के भावों के अनुसार में कृष्ण और राधा जी की सेवा करने के उपयुक्त भक्ति मानना है। यह दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए गिरिराज के परिक्रमा समय पत्थर पर पत्थर मत चढ़ाओ, उसे तुम्हारे 8-10 तल्ला अथवा जितना पत्थर रखा उतना तल्ले का घर बन जाएगा, भवन बन जाएगा। उनकी वहां के पेड़ों की डालियों में डालों में परस्पर गांठ मत दो। तिलू के पेड़ों के डालियों में पत्थर पत्थर में गांठ देते हैं, उसमें कपड़े बांध देते हैं। अतः लड़की की शादी शक्तिपूर्वक गोपियों की जो वह सेवा है कुंजों में और उसको देने वाले गिरिराज हैं, उनको उसी रूप में उनका भजन करने से बड़े प्रसन्न होकर के दे देते हैं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन का यह वैशिष्ट है। दूसरी बात, अभी हम लोग यज्ञ पत्नियों के संबंध में द्विज पत्नियों के संबंध में सुना। इसके पहले बेड़ू द्वीज हुआ। बेणुपुर का तात्पर्य क्या है? गोपियां तन्मय होकर के जहां दो चार मिलती हैं अपने घरों में कृष्ण की लीला कथाओं का चिंतन करती हैं और गान करती हैं। हम लोग रसोई बनाते समय विशेष करके महिलाएं और सब कामों से कुछ निवृत्त होने के बाद में 10-5 बैठ जाती हैं और संसार की बातें करती हैं। पुरुषों को तो रसोई सोई बनाने की कोई बात ही नहीं है। आजकल भोर का युग है, सभी लोग उसी में व्यस्त हैं। उनको फुर्सत नहीं और किसी काम से। मैं इस प्रसंग में निवेदन करूंगा, आप लोगों सबसे निवेदन यही करूंगा, आजकल खुद लोग से भोट का ये घर चढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग भोट का बाइक बाइक अपने मताधिकार का आप लोगों को स्वतंत्रता से व्यवहार जरूर करना चाहिए। एक एक व्यक्ति का आज के दिन में उसको थोड़ा सा ये अधिकार है, किंतु उस अधिकार का दुरुपयोग न हो, उसका सदुपयोग होना चाहिए। अपने विवेक से ये विचार करें कि हमारी पैदिक सूत्रों का कौन पालन कर रहा है या कर रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको हम भूल रहे हैं, वो गीता भागवत के विचारों को लेकर के चलता है, अन्यथा इसके विपरीत लोग आने से धर्म भ्रष्ट होकर के गायों का काटना, माता पिता का आदर नहीं करना, मदिरा मांस पीना पति यही रह जाएगा, उसे देश उछल न जाएगा। यद्यपि काल का प्रभाव है, किंतु जो भागवत श्रवण करने वाले हैं भगवान भक्ति का अनुशीलन करते हैं विचार करके देखेंगे, वास्तविक में जिन लोगों में कुछ कर्म की भू हो ग्रंथ हो और हमारी प्राचीन संस्कृति की जो धरोहर है भारत की, वो भगवत भक्ति है, तत्व ज्ञान है, इसकी रक्षा के लिए ज्योति कुछ थोड़ा सा भी कोई कार्य करता है, राजनीतिक वाले नहीं करते, ये बात ठीक है, किंतु थोड़ी भी दिल में ऐसी भावना हो उनको तो आप बढ़ते हो तभी कुछ हो सकता है। गोपियां क्या करती हैं? इन पचनों से दूर रहता, भगवत भक्त लोग इन पचनों से दूर रहता, जहां मिलित होते हैं गोपियों जैसे परोक्ष में कृष्ण नहीं है, कृष्ण गोचारण करने के लिए गए हैं और घरों में बैठ करके दल का दल स्वजातीय दल कृष्ण के लीला कथाओं
कृष्ण का सुंदर जो भी इन्होंने वर्णन किया होगा, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण योग टोपियां कर भाव ने तोड़ से देखे हैं, तो अपने अपने घरों में बैठे और भाव मात्र से देख रही हैं। कृष्ण का कैसा अद्भुत मनोहर रूप है, श्याम अंगों पर ये पीले रंग की चादर अत्यंत बिजली जैसा, जैसे मेघ में बिजली चमकती है ऐसे माना जाता है। उम्र कैसी है, अभी किशोर उम्र में भी प्रवेश करता है, कभी एक कानों पर कनेर का फूल मधुमत्व होकर और कभी दूसरे कानों पर नन प्रकार के फूलों और पत्तियों से अपना श्रृंगार किए हुए, जैसे एक नट एक राशस्थली में जैसे पहले नट जाता है, नट माने वो अभिनय का प्रारंभ करने वाला, जैसे राधा जी और कृष्ण को बना करके उनको भेजते हैं, ऐसा सुंदर नृत्य करते हैं कि सबका मन मोहन करते हैं। ऐसे ही नटवर के रूप में वहां पर बनोने नहीं होगा, लाखों गायें उनके आक्षेप से चल रही है, लाखों श्रद्धालु उनके पीछे उनका धन सृष्टि करते हुए देखते हैं। कृष्ण के चरणों से जो चिन्ह में उसकी लगभग बड़े ही सुशोभित और पृथ्वी अपने को धन्य मान रही है। उसी समय में उन्होंने बंसी बजाई, गोपियां ये देख रही थी, चाचा समस्त प्राणियों का मन मोहन कर रहे हैं। कई कदम तो वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी की तान से चाचा सब लोग उनको मुग्ध कर रहे हैं, मन भमन मुस्कान उनके वो क्या कहते हैं, हमारा बहुत खंड खास है हाथ होता है, जब ऐसे व्यक्ति हम लोग छवि निहारती रहते हैं, जिसमें कृष्ण एक वन से दूसरे वनों को जा रहे हैं, लाखों गायों और सखाओं के साथ में बलदेव भैया जी हैं, दाऊ जी हैं और एक बंदे अधन कर्णी भी राजी थे और मंद मंद मुस्कान उनके होठों से निकल रहा है। ऐसे कृष्ण का रूप में भी हम देखेंगे हमारा जीवन हो सकती हो। जिन लोगों ने कृष्ण का ऐसा रूप नहीं देखा उनके आंखों को का कोई भी फल नहीं है, वो आंखों पर वज्र गिर जाता फट जाती तो अच्छा। कैसे कृष्ण इनके साथ में कहा क्या बल कहा बल जदराम कृष्ण नहीं नहीं अपनो दान फलमितम न परम विदाम सख पशुन अनुवेश वक्रम ब्रजेश सुतोयो अनुदेन चुष्टम वक्रम ब्रजेश सुनयो अनुदेन चुष्टम दैवानिति तम अनुराग प्रताप। यहां पर दाऊ जी का प्रसंग गोपियों को अभिष्ट नहीं है, गोपियां नहीं जाती हैं दाऊ जी, बलदेव जी भी बड़े चतुर हैं, यहाँ पर बड़ी चतुराई से इस श्लोक में गोपियां वर्णन कर रही हैं। अरे जो श्याम और गौ वर्णन जो जा रहे हैं उनके मुख में वेणु है, किंतु बलदेव के मुख में तो वेणु नहीं होती, सिंह आदि रखते हैं, वेणु भी बजा सकते हैं किंतु वो अधिकतर सिंह बजाते हैं और कृष्ण वेणु बजाते हैं। अनुवेणु सिस्टम वेणु का वादन करते हुए जो जा रहे हैं उनका मुख यदि दर्शन किया जाए, जिनके हाथों से मुखों से मंद मंद मुस्कान खिलती रहती है, हमारा विशेषता कृष्ण जब जा रहे हैं तो बलदेव जी इन चीजों को समझते हैं, जो गोपियों के साथ में इनको मिलने में संकोच हो जाता इसलिए वो आगे आगे चले जाते हैं। कृष्ण अब अकेले रह जाते हैं सखाओं के साथ में, उस समय में कृष्ण बंसी बजा रहे हो और मंद मंद मुस्कान से गोपियों की तरफ में देख रहे हो, करुणा भरी दृष्टि से
उनका दर्शन करना और भी उत्तम है। और उससे बेहतर क्या अनुभेद सिस्टम जो ब्रज के नंद बाबा और कृष्ण महाराज हैं, ये दोनों ही गोप हैं, ब्रजेश ब्रज के राजा हैं। अब यहां पर ऐसा भाव किया गया कि ब्रजेश जो कृष्ण महाराज हैं वो नंद बाबा से कम नहीं है, उनसे पीछे पड़ते हैं। नंद बाबा को 7 लाख गाय 9 लाख और उनको है 11 लाख गाय। नंद बाबा को 1 बेटा और विष्णु महाराज जी को 1 बेटा श्रीदान और 2 बेटियां राधा जी और अनंत जी। और ये ऐसे सुंदरी जो नंद बाबा के बेटे को भी अपने सौंदर्य से उनका चित्त भी हरण कर लेते हैं, साधारण नहीं। इसलिए ब्रजेश जो है विष्णु महाराज वो जरा स्वरस उनसे भी कुछ अधिक पड़ता है। वो उनकी पुत्री जो श्रीमती राधिका जी है, ब्रजेश सुतयो सुताश्च सुतश्च सुतयो, नंद बाबा का सु और विष्णु महाराज की सीता, ये जुगल जब बंसी बजाती है परस्पर और एक दूसरे का मुखारविंद देती है, कैसे राधा जी ने कृष्ण की बंसी दे दी और अपने मुखारविंद कर रखा और कृष्ण उनके छेदों पर अपने हाथ रख दिए, वस्त्र छोड़ती है और कृष्ण उसका मधुर रूप से वादन करते हैं। इसलिए कृष्ण के बाद में मनु अथक कृष्ण का बजाया हुआ जो बिन उसको राधा जी बजा रहे हैं और उस समय में परस्पर जो देख रहे हैं उनका जो सौंदर्य माधुरी है वो सबसे बड़ी निराली है। गोपियों जिनको नहीं देखा उनका जन्म प्रथा था, कैसे देखें हमारे साथ में चलो भाई, दूर से देखेंगे निकट नहीं देखेंगे। क्यों? अरे ये हमारी निगोड़ी, ये मरकटी जटिलाल कुटिलाल सासक ननद है, या ऐसे ही अपने सासों को देकर के कह रहे हैं, कैसे जाएंगे हम लोग? अरे धीरे धीरे बात करो नहीं तो वो सुन लेंगे, तो तू सुनने वाली कहती है, अरे सुन करके ये क्या कर लेगी, इसकी बेटी भी तो जा रही है, खुद भी देखने के लिए जाएगी, जब खुद ही ये जाती है तो ये क्या कर लेगी, जो कर लेगी वो देख लेंगे, हमको तो चलना है। दूसरी कहती है भाई दूर से जाकर के तुम देख सकते हो, किंतु उनके अधरों से निकली हुई इस अमृत अधर अमृत को पान करना हम लोगों के लिए बड़ा जा सकते हैं, हम निकट नहीं जा सकते। अरे चलो तो निकलो, देखो तो जाओ, स्वरूप को देखेगी उस समय में अपने आप सारा मन फेंक जाएगा, अपना मन अपने होश में नहीं रहेगा, उस समय पर्वत को फेंक करके जो कुछ कराना होगा। कृष्ण की ऐसी माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। इसी तरह से समय तो बहुत अधिक हो गया, और भी कुछ कहना चाहता था, कल नए सवेरे कुछ मिल बहुत देरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से गोपियां वर्णन कर रही हैं, कोई गोपी कहती अरे मर करके हिरण हो जाता तो अच्छा, वहां पर सास ससुर का और देवर का ये व्यंग नहीं सहना, वो तो हमें छोड़ते नहीं है। आज देखो तो कितने सौभाग्य की बात है, ये हिरण ये पशु जन्म में इनका ही जीवन धन्य है, क्यों धन्य है? अरे देखो ये कृष्ण के अत्यंत निकट होकर के और मानव मुख से मुख लगा करके उनकी प्रणय की भीख मांग रही है, और उसका पति पीछे खड़ा है कृष्ण का, जिन्होंने कृष्ण को ही अपने साथ बना रहा है, इसीलिए वो धब्बे लगे काली का, वो एकदम कहता है पति को स्त्री को तुमको कोई चीज की डर नहीं, कोई कहने वाला है तुम्हारी ननद सास जो भी मैं तो तुम्हारा पति हूं, तुमको किसी प्रकार का डर नहीं, हमारे पति हमारे विरोधी हैं, सास भी विरोधी, समाज भी विरोधी,
गुरुजन भी विरोध होती, हम इस जन्म में तो ऐसा नहीं करते, जब उनसे निकट आकर के सबके सामने खड़ी होकर के हम उसे प्रेम कर सकते, इसलिए मर करके हमें विरोध नहीं। कोई कहता है कहती है अहो ये देवता जो विमान से चलती हैं अपने पत्नियों की गोद में जो सो जाती हैं, इस रासलीला को देख करके देवता लोग दर्शन करने के अधिकारी नहीं, वो नहीं देख पाते, देखने का अधिकारी कौन है, कुछ कुछ हद तक उनकी इंद्रियां हैं, जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया, उनको भोजन खिलाया और उनको प्रेम की प्राप्ति हुई और उनके पतियों को नहीं हुई, उन्होंने प्रथा अहंकार में यज्ञ करने को अपने को बड़ा भारी समझा, ब्रह्मचर्य धारण करने को अपने को बहुत भर, कंस के डर से मारे कृष्ण का दर्शन भी नहीं करने जाता और गोपियां डर है कुछ नहीं कर सकते, ब्राह्मण की पत्नियां जैसे ऐसे ही वो कर रहे हैं, वो देवताओं की जो पत्नियां हैं देवियां हैं विमानों में अपने पतियों के गोद में ही कृष्ण का यह रास देकर के मूर्छित होकर के और उनके केश में बांधे जाने वाले जो फूल थे वो नीचे अहो यदि हम इन देवताओं की पत्नियों के रूप में कभी जन्म ग्रहण करते हमारा जीवन सार्थक हो जाता, अरे इनकी तो बात छोड़ो ये तो मनुष्य जीवन जोड़ी में या देवता जोड़ी में है, अरे इन बछड़ों को तो देखो, इन गायकों को भी देखो तो कृष्ण के यह अनुपम माधुरी और वेणु माधुरी का श्रवण करते एकदम खाना पीना सब भूल गए हैं, जो घास उनके मुखों में है वो मुखों में ही जा रहा है, न उसे निकल पाते हैं और उसे छोड़ पाते हैं, अरे बछड़ों को तो देखो छोटे छोटे अब बच्चे भैया के तन में मुंह लगा रहा था, उसमें थोड़ा सा दूध उनके गले ले गया, न तो निकलते हैं न फिर रहे हैं, विवश होकर के जहां काम काम को दोनों की भांति ऐसे किए हुए कृष्ण की माधुरी बहन माधुरी और कृष्ण का रूप आंखों से निहार कर सजल आंखों से आंखों में आंसू आ जाते हैं और वैसे से कैसे एकदम संतप्त होकर के जर्जर कर सकते हैं, और बच्चों का जन्म गायों का जन्म भी बहुत सार्थक है क्योंकि कृष्ण उनको गले से लगाते हैं, उनका ऐसे लोरी को दुलार करते हैं, गायों के पीठ को सहलाते हैं, गायों के चरणों के पीठ को भी वो धोते हैं और पूजा करते हैं गायों को चढ़ाते हैं, और यही जरूर अरे देखो ये बनते जो सुख पक्षी हैं मयूर पक्षी हैं कोयले हैं पपी हैं ये सब पक्षी नहीं है, ये तो सिद्ध महात्मा लोग हैं, ये लोग वेद की भक्ति रूपी डाल को पकड़ता था, उस भक्ति के डाल को बैठे थे, ऐसा मालूम नहीं चेष्ट है कोई कुछ बोल नहीं रहे, किंतु इसमें से जो कोयल है जो गुहू गुहू करता है मयूर के का राधा और कृष्ण के लिए के और का कृष्ण को देख करके मयूर आनंद से नृत्य कर उठते हैं, ऐसे ये नृत्य करने वाले और कीर्तन करने वाले ये सब पक्षी लोग परम भगवत ये पक्षी साधारण ऐसा ही हमारा जन्म हो जाता है जो कृष्ण के निकट से कृष्ण की ऐसी सेवाओं को कर सकते, अरे यमुना का देखो जिनकी धारा सफल हो गई कृष्ण का रूप और ये पेड़ का आगे न बढ़ पाती है और ऊपर से जो पानी आता है भाव पड़ जाता है उसमें कमल के पुत्रों को उठा करके कृष्ण के चरणों में समर्पण कर रही है, कैसे अपने बाहों से बांध क्या है उनकी लहरियां ही बांध क्या करती हैं, पहले तो वो कृष्ण को अपने पानी से आलिंगन से अबद्ध कर लेना चाहते हैं, पानी इतना बन जाता है जब जब आगे नहीं सरक पाता पानी बढ़ जाता तो कृष्ण को यहां तक पानी आ जाता है, इसका मतलब जो यमुना जी उसी पानी से आलिंगन करते हैं, किंतु कृष्ण निश्चय से भाव से जब खड़े रहते हैं उस समय में वो लज्जित हो जाते हैं, लज्जित होकर के नीचे उतर करके उनके चरणों में पुष्पों को लेकर के उपहार, और यमुना जी आकाश में देखो बादलों को देखो जहां कृष्ण जाते हैं अपनी छाया से छाया से उनको रक्षा करते और सुंदर सुंदर कुसुम जैसे बुंदों को सीता लाल एकदम कर करके कृष्ण को और की सखाओं को गायों को किसी तक बना देते हैं, और हमारा सौभाग्य दाता मेघ बनकर इस प्रकार से विभिन्न रूपों में दिन भर रात भर अपनी भी चर्चा करते हैं, इसके भक्तों को उसने कहीं ऐसी प्रकार से चर्चा करते हैं। इसका फल क्या हुआ? पूर्णिमासी के दिन अभी प्रसन्न आएगा, पूर्णिमा का दिन आकाश लाल हो रहा है, पूरा दिशा सूर्य की लाल लाल किरणें मानो पूर्व दिशा को अपनी प्रियतमा के अंगों में लाल हो रहा है। कृष्ण को स्मृति हुई, आदमी ने बंसी बजाई। क्या बंसी बजाई? कलम वाम जगम फलो वाम दिशा मनोहर। गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो उन्होंने वरदान दिया था कत्यायनी के रूप में, कत्यायनी की उपासना के पश्चात जो अगले मास कौन से ऋतु में, शरद ऋतु में तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करना, ऐसे शरद चंद्र के तुम के दिन में कलम जगो कलम वाम दिशा मनोहर। ये वेद का मंत्र है, गोपाल मंत्र राज है, उसको बजाया कले। कैसे बताया? क और ल और उसके साथ में वाम दिशा अर्थात दीर्घ मनोहर मानी चंद्र मनोहर चंद्र, इससे युक्त हो गया कले। इसको बताया मैंने कि कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है, गोप गोपों से परिवर्तित होकर के विलास पारायण कृष्ण का यह स्वरूप है गोपाल। इसको बजाया गोपियां जो ध्यान थी वहीं से सुनी, माताएं सोई गई तथा लोग सोए गए, पशु पक्षी भी वैसे ही गए, केवल गोपू भाव वाले कुछ गोपियां उन गोपियों ने भी जो नित्य शिक्षा गोपियों के साथ में जो नित्य शिक्षा गोपियां उनके साथ में रहने वाली समस्त प्रकार के विकारों से रहित होने वाली पूर्ण प्रेम को प्राप्त करने वाली ये गोपियां ही और आजगमो अन्नो अन्नम अलग दो जमा बंसी की ध्वनि उनके कान में पहुंच करके उनके चित्त को वहां से निकाल लिया, चोरी करके भागा। गोपियों ने देखा कि हमारा ये संपत्ति मन ही को जो चुरा करते हैं ये भाग लेंगे, बस पीछे पकड़ने के लिए दौड़ो। उनके कपड़े लगते धरे रह गए, आभूषण कैसा का कैसा पंद्रह आए कान हमें अंजन है, बस बंसी को कर करके भग। कोई अपने गले का हाथ पैरों में पहन लिया, कमर की करदनी गले में पहन, कोई रसोई पका रहे थी बस वही छोड़ दिया, तवे पर रोटी रखी थी वो ही मन जल्द ही खड़ी, कोई कपड़े अभी पहन रही थी अभी अंचल नीचे गिरा हुआ था, अंचल सरकता गया था भी जो जिसकी स्थिति में था बेहोश था उसके पीछे कहां गई, जहां पर गई थी जहां से निकल रही थी वहां पर कैसे पहुंची जबलपुर कुंडला, ऐसे दौड़ी कानों में कुंडल तलक रहे हैं। अब वो दिन की शोभा और ऐसे चली जहां पर एक दूसरे को कोई देख नहीं रही, अकेले ही जा रहा किसी से नहीं बताया, ऐसे वहां पर भगी और वहां पर क्या हुआ, कृष्ण ने कैसे उनको ठगना चाहा और कृष्ण कैसे उनके द्वारा ठग गए और कैसे रात की जा रहा हूं उसमें गोपियों की क्या भावना रहे। अब फल का विषय आज यही तक बन रहा यं प्रापजन्तं ते समवेतपृच्छन् द्वैपायनो विरहकारया सर्वाभिनेतु सङ्गर्वभूतय मुनिमान। अभी राष्ट्रपति का अध्याय समाप्त हुई, राष्ट्रपति का अध्याय राष्ट्रपति अध्याय
स्थान है, सर्व स्थान भगवान की लीलाओं में से वर्णन किया गया। इसका वर्णन नाम सुधार जी ने रासलीला के बाद कृष्ण मथुरा में चले आए, अपूर्ण ने मथुरा में लाया। इसके बाद में कृष्णचंद्र जी और बलदेव जी दोनों मथुरा में रहते थे, उनका मन नहीं लगता था। वहां के वसुदेव जी ने, उग्रसेन ने, अपूर्व ने, सब लोगों ने मिल करके कहा कि ये जब तक इसका संस्कार नहीं बदला जाएगा तब तक ये ब्रज में फिर लौट सकता है, इसलिए यज्ञ का भी इसको करा दिया जाए। सब लोगों ने बहुत जल्दी से कल ही हो, अधिक विलंब न हो, और इसके बाद में इसको कहीं गुरुकुल में पढ़ने के लिए बहुत दूर भेज दिया जाए। और यज्ञोपवीत भी कराने से इसमें संस्कार हो जाएगा कि देवकी और वसुदेव का पुत्र है। तो जिस दिन उनका यज्ञोपवीत हो रहा था मुंडन, उस दिन उनका मुंडन हुआ राम और कृष्ण दोनों का। गर्गाचार्य इत्यादि यज्ञोपवीत देने के लिए बैठे, श्याम और गौर की बड़ी सुंदर जोड़ी चोटी रख दिया गया, पीले वस्त्र उनको दे दिए गए, खड़ाऊ इत्यादि उनको दिए गए। और जब यज्ञोपवीत संपन्न हुआ, हवन इत्यादि हो गया, गुरु जी ने कहा कि जाओ भिक्षा मांग करके लाओ कम से कम पांच गृहों से। कृष्ण बलदेव जी भिक्षा के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, गुरु जी ने उनके कंधे में झोली लगा दी पीतांबर की। सबसे पहले माता के यहां भिक्षा मांगनी होती है यज्ञोपवीत होने पर। कृष्ण मैया को ढूंढ रहे हैं, मेरी मैया ने कहा था जब तुम्हारा उपनयन होगा मैं तुम्हारी झोली को सोने से मैं भर दूंगी, सोने और जवाहरात इत्यादि से भर दूंगी। मेरी मैया कहां है ढूंढ रहे, पर ये मैया नहीं मिलती। देख लीजिए सामने भिक्षा को पात्र देने के लिए और वहां पर तैयार बैठी है जो हमारे पास में मैया कह करके आएगा देगा, किंतु कृष्ण उनके पास में नहीं जा रहे। वो मैया की चिंता करते हुए एकदम मैया ने कहा था, और चिंता करते करते आकाश की तरफ में देखते देखते बस विस्तृत होकर के मैयारी कह करके अर्जित पड़े। सब लोग शोक में विवल हो गए। देवकी सोच रही है कि मैं इनके सामने हूं, मेरा ये बेटा और हमको मैया नहीं मान करके यशोदा को ही मैया मानता। फिर उसको किसी प्रकार से होश लाया गया, किसी प्रकार से वो उत्सव संपन्न हुआ। और दूसरे दिन वो सुदामा जी यहां पर थी मध्य प्रदेश में, सांदीपनी की यहां उनको पढ़ने के लिए थी, वहां की बातें भी संक्षेप में सुनाई होगी। तत्पश्चात वो मथुरा में लौटे, करीब दो तीन महीने उसमें लग गए। तत्पश्चात किस प्रकार से यमुना देवी के किनारे अपने राजभवन के अट्टालिका पर वो खड़े थे और उद्धव जी से कैसे भेंट हुई, और उद्धव जी को उन्होंने समझाया हमारे माता पिता को सांत्वना देने के लिए ब्रज में जाओ। मैंने गोपियां हमारे प्रति इतनी अनुरक्त हैं, जगत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। मामेव प्रेष्टम, मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूं, नेतृत्व और दूसरा कोई नहीं। वो केवल हमसे मिलने के लिए ही प्राणों को धारण कर रखती है, क्या होता है दीदी। वो केवल हमारे लिए ही जीवित हैं। मैंने कहा था कि मैं कल नहीं तो परसों आऊंगा, मैं नहीं जा सका। बड़े अधीर हो रहे हैं, तुम जाओ उनको सांत्वना दे आओ। उन्होंने अपने गले की वैजयंती माला उतार करके कृष्ण को दी, अपना दुपट्टा उतार करके दी, अपने प्रधान के वस्त्र भी उनको पहना दिए और भोजराज का कंस का वह रथ सोने का ऊपर उनको चढ़ा दिया और भेज। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं, मैं कृष्ण को छोड़कर के एक सेकंड भी नहीं रह सकता, मैं कैसे रहूंगा। कृष्ण ने उनके मन की बात भांप ली और कहा, उद्धव मैं मथुरा में मैं नहीं हूं, मथुरा में मैं आंशिक रूप में हूं, मैं तो संपूर्ण रूप से ब्रज में गोपियों के साथ नहीं, गोपों के साथ नहीं हूं। तुम वहां जाएगा तो हमको भूल जाएगा, जब मुझे वहां पर देखेगा संपूर्ण रूप से वर्तमान समय तुम भूल जाएगा, और तुम वहां से लौटेगा या नहीं हमको संदेह हो रहा है। उद्धव जी ब्रज में गए, उन्होंने पहले तो देखा कृष्ण के समय में जैसे क्या हो जाता है, उस समय उद्धव जी ने प्रकट ब्रज में जैसे कृष्ण वृंदावन में थे उस समय का दृश्य उनको सामने में आया। उन्होंने देखा बड़ी बड़ी थान वाली गायें अपने बछड़ों के साथ में चल रही हैं, थन के भाग से वे चल नहीं पाती, बड़े बड़े सांड परस्पर लड़ रहे हैं, सुंदर सुंदर बछड़े फुदक रहे हैं, गोप गोपियां कृष्ण के कीर्तन संबंधी कीर्तनों में मस्त हैं, रात के समय सुंदर मणि के प्रदीप जल रहे हैं, सुंदर सुगंधित हवा बह रही है, सभी प्रसन्न लग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में यह दृश्य अंतर्हित हो गया और उन्होंने प्रकट ब्रज में जब कृष्ण मथुरा में चले आए वृंदावन को छोड़कर वह दृश्य बड़े विह्वल हो गए, नंद के द्वार पर पहुंचे, शाम हो गई थी, जानबूझ करके अंधकार के समय में आए, नंद बाबा को पता लगा वो आए और उद्धव को स्वागत करते हुए और भीतर ले गए। उन्होंने उनको कुछ खिलाया पिलाया, था तो कुछ नहीं, क्यों नहीं था, कृष्ण जब चले गए रसोई किसके लिए बने, घर लिपे पुते नहीं, चूल्हा भी टूट चुका, उसमें मकड़ों ने जाल बुन दिया, बर्तन मजे नहीं, यशोदा जी फिर उठी ही नहीं। यशोदा जी की तो ये स्थिति थी, एक दिन दोपहर में चिलचिलाती हुई धूप में श्याम संबंधी श्याम की छोटी सी मुरलिया, उनके झिंगुरिया मोर मुकुर और उनके खिलौने एक जगह पोटली में बांधी और जाने के लिए तैयार हो गई है। एक सखी ने कहा, कहां जा रही है मैया, मैं वहीं पर जाऊंगी जहां पर मेरा कन्हैया है। मारा कन्हैया यहां पर पड़े बैठे, वो तो बहुत दूर दूर कहां नंदगांव में है, मथुरा में है, नंदगांव की ये बात, हां मैं वहीं जाऊंगी, इसलिए जाएगी हम वहां पर जाएंगे और जाकर के देवकी रानी से मिलूंगी और कहूंगी यह पुत्र तुम्हारा ही है, मैं सवेरे रोज इसका दर्शन कर दिया, तुम्हारे घर में झूठे बर्तनों को मांज दूंगी, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाऊंगी, भीख मांग करके कहीं से खा लूंगी, तुमको किसी प्रकार से तंग नहीं करूंगी, बस सवेरे आकर के अपने तुम्हारे पुत्र का जरा मुख देख लूंगी बस। और ये कहते कहते ही वो फिर पछाड़ खा करके गिर गई। यशोदा का जीवन इस प्रकार से चल रहा है, नंद बाबा किसी से मुख नहीं दिखलाते, गोपियां कहती हैं तूने कृष्ण को आभूषण पर और वस्त्रों पर मथुरा में बेच करके तू आ गया, तू कैसे आ गया, इसलिए डर के मारे लज्जा से वो घर से नहीं निकलते और उद्धव उनको समझाने के लिए जा रहे हैं।
उद्धव को कुछ अभिमान था जी मैं बहुत तत्व ज्ञानी हूँ, तत्व ज्ञान को दे करके और उन लोगों को संतुष्ट कर दूंगा, बहुतों को समझा चुके हैं वो, आज इनको भी जरा समझाऊं। ब्रज में पहुंचे, जिस समय पहुंचे उस समय में नंद बाबा ने उनको आदर करके सोच रहे हैं उद्धव जी इनको कैसे समझाऊं। नंद बाबा जी अपने आप कहने लगे, ओहो मेरा कन्हैया कैसा, किंतु उच्चारण नहीं कर सके। जो ही मन में यह पूछने का प्रश्न आया तो ही भाव विफल हो गए, आंखों में आंसू छा गए, गला रुद्ध हो गए। जो जो कुछ कृष्ण का नाम उच्चारण करने जाते हैं याद आती है, कुछ कह ही नहीं पाते। थोड़ी देर में अपने को संभाल करके उनसे पूछते हैं, हमारा भैया वसुदेव तो ठीक है, बड़े सौभाग्य से कंस अपने कर्मों से मारा गया, यह नहीं कहा कि कृष्ण ने मारा, अपने कर्मों से ही, बुरे कर्मों के कारण ही वो मारा गया। अब वो कुशल से है, इतना कहने के बाद ही जब ही ये पूछते हैं, कृष्ण बलदेव तो कुशल से हैं, और पूछते ही उनका गला रुष्ट हो गया और फिर रोने लगे। उद्धव मैं इसको भूलने की बहुत चेष्टा करता हूं, भूलने की चेष्टा के लिए जाता हूं यमुना के किनारे, वहां के पेड़ पौधे घाट बोलते हैं कन्हैया कहां है कन्हैया, उसके पैरों की छाप बोलते हैं, वहां के पेड़ पौधे सभी कृष्ण कृष्णमय हो रहे हैं, उनकी स्मृति आती है, मैं वहां रह नहीं पाता, वहां से गिरिराज जी में चला जाता हूं अपने मन को बदलने के लिए, और वहां पर कृष्ण के जितनी चिन्ह है मानसी गंगा से लेकर के कुसुम सरोवर इत्यादि, वो सब समय उसका स्मरण कराते, उस समय मैं रह नहीं पाता। मैं कहीं भी ब्रज में जाता हूं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां पर कृष्ण खेला कूदा नहीं हो, उसकी स्मृति वहां पर जड़ित न हो, इसे कहीं मुझको चैन नहीं आता। और ये कह करके डकर डकर करके रोने लगे। उद्धव जी ने कहा ऐसा सौभाग्यवान सौभाग्यवान इस जगत में नहीं है, कोई जगत भर में नहीं है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि ऐसे महापुरुष को मैंने देखा, उन्होंने नंद बाबा को कहा, ओहो आप और ये मैया यशोदा जी दोनों जगत में सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं। आज परब्रह्म साक्षात समस्त कारणों का कारण, स्वयं आदि सबका आदि, स्वयं अनादि समस्त ईश्वरों का ईश्वर या परब्रह्म आपकी गोद में आया है, आपके घर के आंगन में आया, जिसको यशोदा जी दूध पिलाती और उनके प्रति आपका पुत्र का भाव है। इतना सुनते ही नंद बाबा और जोर से रोने लगे। मैं समझता था कि जो कृष्ण के साथ में रह करके तुमको कुछ ज्ञान हुआ होगा, किंतु मैं देखता हूं तुम जैसा का तैसा मूर्ख, तुमको कोई भी ज्ञान नहीं। अरे संसार में मेरे जैसा कोई दुर्भागा व्यक्ति आज तक उत्पन्न हुआ होगा, विश्व के सृष्टि से लेकर के अब तक आज तक आशा महाराज जैसा दुर्भागा कोई नहीं उत्पन्न हुआ। वो परमेश्वर जिसके लिए तुम कहते हो हमारे घर में बच्चे के रूप में आया और मैं उसको प्यार नहीं दे सका, और वो अब देव और वसुदेव के घर में खेल रहा है, मेरा जैसा और कौन दुर्भागा व्यक्ति है। अरे राम के पिताजी दशरथ जी पिता थे, राम के वनवास करने के समय ही जो ही घर से निकले तो ही महाराज दशरथ ने क्या कहा, हा राम, और फिर हा कहते हुए ही प्राण प्रत्याग कर दिया, राम भी नहीं निकल। यदि पिता है बीच में तो वो है, मैं पिता कृष्ण का पिता कहलाने योग्य नहीं हूं। आज मेरा जैसा कौन दुर्भागा होगा हमको छोड़ करके, क्योंकि मैं मुझमें प्रेम नहीं था, मैं इसकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर सकता था, इसलिए हमें छोड़ करके जहां उसको प्रेम मिल रहा है वहीं पर इसे दुर्भागा मैं हूं, और तुम उसको सौभाग्यवान कह रहे हैं। और बड़े जोर करके डकर डकर से रोने लगे।
बस ये उद्धव जी विचार कर रहे हैं सचमुच तो मैं इनको समझाने गया किंतु ये तो ठीक कर रहे हैं सचमुच में मैं ये देखता हूं यदि विश्व में कोई सौभाग्यवान है तो यदि वो कौन है भगवान का नाम लेते हैं जिनके आंखों में आंसू आ जाए जिनका भगवान का नाम लेते 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 गला रुक जाए जिनके अंगों से पसीने आ जाए वो जगत में धन्य है और इनको देख रहे हैं इनकी कैसी दशा हो रही है इसलिए शास्त्र सब हमारा हमारे कथा का अनुमोदन करते हैं कि नहीं जगत में ये सौभाग्यवान किंतु जब नंद बाबा की बातों को सुनता हूं तो देखता कि वो परम सत्य कह रहे हैं हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था ये फिर हमें कहां रो रहे हैं तड़प रहे हैं और मैं इनको कह रहा हूं सौभाग्यशी ये तो बहुत मैंने गलती की तो मुझे क्या कहना चाहिए उनके हृदय में ऐसा कोई शब्द नहीं मिल पड़ा जो आगे कह सके इस तरह से रात भर बातें होती रही शुभानंद जी ने आप लोगों को बतलाया होगा सारी रात इसी में बीत गई और यशोदा मैया जी डकर डकर के आंख बंद किए हुए इनकी बातों को कहीं सुन रही हैं या कहीं पर मूर्छित हो जाती हैं सुन नहीं पा रही इसलिए उद्धव जी को मैया से बातचीत करने का कोई भी प्रसंग नहीं आया सवेरे होते ही वो स्नान करने के लिए कृष्ण कुंड में गए कृष्ण कुंड कहां है ऊपर से जब उतरेंगे जहां पर आजकल बसें खड़ी होती हैं उसी के पास में एक सरोवर है उसको कृष्ण कुंड कहते हैं और उसी से थोड़ा आगे और बरसाना की तरफ में जाने पर उद्धव क्यारी है जहां पर कि उद्धव से गोपियों का भेद हुआ वहां पर गए वहीं पर स्नान किया स्नान करके तिलक इत्यादि करके जब ही निकल करके आ रहे थे इतने में देखा बाएं तरफ में सुंदर सघन कदम्ब की क्यारी है फूल खिले हुए हैं शीतल मंद सुगंध बवा हवा धीरे 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 प्रवाहित बहुत घना वो वन प्रदेश है उसी में उन्होंने कुछ गोपियों को देखा गोपियां इस प्रकार से बातें कर रही ये कौन है अश्व सखियों के अतिरिक्त राधा जी के अतिरिक्त अश्व सखियां उनकी सेविकाएं हैं हो सकता है कि वो रूप मंजरी रति मंजरी लौंग मंजरी इत्यादि रूप मंजरी इत्यादि सारी हैं ओहो ये कौन आ रहा है कोई कहे तुम नहीं समझ पाती अरे ये श्याम का कोई दूत होगा तो तू कैसे पहचान गई अरे ये इसलिए देखने में श्याम ही जैसा है किंतु श्याम नहीं है वैसा ही रूप ऐसा ही स्वभाव वैसा ही चलन वैसे ही कपड़े ये सब इसके हैं इसलिए श्याम तो है ये किंतु वो श्याम नहीं फिर ये कौन है देखो हमारी नाके कहीं भूल नहीं कर सकती कृष्ण के अंगों में जो गंध है उसको आज तक इन्होंने संरक्षित रखा है मरना वो पहचान जाती है इसके फूलों से जो गंध आ रही है इसके कपड़ों से जो गंध आ रही है इसे ये प्रतीत हो रहा है ये कपड़े कृष्ण जैसे नहीं कृष्ण के ही हैं ये मारा भी कृष्ण की ही है इसको उसने किया है किंतु क्यों आया ये आया क्यों और भी सोने के रथ में चढ़ करके आया सोने के रथ में इसलिए चढ़ करके आया जब कृष्ण ने इसको बैठाया होगा वो इसलिए बैठाया है सोने के रथ में या मैया को दिखलाने के लिए मैया मैं तो वहां पर चरवाहे का लड़का था गांवों को चराने का काम कर रहा था और यहां मैं क्या हो गया मथुरापुरी का नरेश हो गया और मेरे पास में सोने के खजाने हैं और ये सोने का रथ है देखो हमारा सेवक एक सोने के रथ पर चढ़ करके जा रहा तो मैं कैसा हूं ये समझो इस चीज को दिखलाने के लिए कृष्ण ने शायद देखा इसे और बड़ी क्या संतना की बात हो सकती है गरीब दुखी का भिखारी का लड़का सहनशाह हो जाए तो इससे बढ़कर के कौन सी बात होगी इसलिए यह दिखलाने के लिए मानो ऐसा उसने किया है उद्धव जी ने कहा यह सत्य कहती हमको इस रूप में नहीं आना चाहिए था हमको तो पैदल आना चाहिए था बिना जूते का और छाते का आना चाहिए था इसलिए यदि पृथ्वी फट जाती तो मैं उसमें अंतर्हित हो जाता, लज्जा से मुख दिखाने वाला नहीं मैं अब। इस तरह से करने लगे। इधर गोपी कहती है ये देखो ये आया क्यों, आया इसलिए अभी अक्रूर नाम का कोई व्यक्ति आया था, इसी सोने के रथ पर चढ़ाकर कृष्ण बलदेव को यहां से हरण करके ले गया। अब ये आया है इसीलिए कि कंस मारा गया, अब उसका पिंड दान 12वें दिन में तिथि पर उसको देना है पिंड दान। सब वहां पर बैठे हुए होंगे ब्राह्मण लोग उसका पिंड दान कराने के। जादो ने सोचा होगा कि यहां पिंड उचित नहीं है, वृंदावन में जाओ, ब्रज में जाओ, नंदगांव में जाओ, वहां पर कृष्ण के विरह में सारी गोपियां और सारे गोप मरे हुए मिलेंगे और उनका कलेजा निकाल करके लाना, उस कलेजे का ही पिंड दान। इसीलिए शायद सुन करके उद्धव जी और भी बड़े दुखी हो गए। है मैं इसलिए आया, इतने उद्धव जी को लेकर के ये गोपियां उनको प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम करके गोपियों ने इनको इशारे से थोड़ा और सघन वन में भीतर ले गई, जहां पर मैं आप सब लोगों को परिक्रमा के समय कार्तिक महीने में सघन वृक्षावलियों के भीतर में जहां पर कि रास मंच बना हुआ है उसी के निकट पानी का एक छोटा सा सरोवर भी है यहां पर ले जाता हूं, वहीं पर वो पहुंचे। देखा कदंब वृक्ष के नीचे फूलों की सेज लगी है, कमल के फूलों और सारे अंगों में चंदन मले चंदन लेपा गया, फूल सूख करके चूर चूर हो रहे हैं राधा जी के अंगों के ताप से, विरह ताप से, और चंदन भी जो अंगों में लगाया गया वो भी चूर चूर हो रहा है। एक क्षीण सी पुतली, सोने की पुतली वहीं पर सोई हुई है, मंद मंद श्वास चल रहे हैं, श्वास है या नहीं ललिता जी एक रुई लेकर के और देख रहे हैं, श्वास चल रहा है, श्वास चल। उसी समय उद्धव गए और उसी समय कृष्ण राधा जी की यह विरह दशा देखने के लिए स्वयं एक भौरे का रूप बनाया और वहां पर उपस्थित हो। एक तरफ में उद्धव जी बैठे हुए बहुत दूर से, राधा जी उनको नहीं देख रही, उद्धव बड़ी दूर से देख रहे हैं, बल्कि किसी कुंज की ओर से देख रहे हैं, और राधा जी इनको नहीं देख करके छीन